एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
क्यों कोई आज भूला फिरे।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, हमारे मनों को हृदयों को खोल दे पिता, मेरे श्रोताओं के संग विशेष रूप से हो पिता, उन्हें तेरा आत्मा दे और तेरे वचन के द्वारा आशीष दे, मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि मैं तेरे आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तेरे वचन को बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है मसीह की वापसी का तौर तरीका। जब मसीह ने उन चिन्हों के विषय में बताया जो यह संकेत देंगे कि उसका आगमन निकट है, उसने इस बात की भी चिंता प्रकट की कि उसके लोग झूठे दावों द्वारा धोखा ना खाएं। उसने चेतावनी दी कि दूसरे आगमन से पहले झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। उसने कहा, यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है तो विश्वास ना करना। मत्ती 24:24-23। सचेत सबल होता है, विश्वासियों को वास्तविक घटना और झूठे आगमन के बीच अंतर करने में सक्षम बनाने के लिए कई बाइबल अनुच्छेद उस तौर तरीका का विवरण प्रकट करते हैं जिससे मसीह वापस आएगा। आइए हम उसे देखें। पहला है एक शाब्दिक और व्यक्तिगत वापसी। जब यीशु एक बादल पर ऊपर जा रहा था तो दो स्वर्गदूतों ने शिष्यों को संबोधित किया जो अभी भी ऊपर जाते अपने प्रभु को देख रहे थे। हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। हम यह पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 1:11 में। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि यही प्रभु जिसने अभी अभी उन्हें छोड़ा है एक असली और वास्तविक व्यक्ति, कोई आत्मा नहीं। लूका 24:36-43 देखें, पृथ्वी पर लौटेगा और उसका दूसरा आगमन उतना ही शाब्दिक व व्यक्तिगत होगा जितना कि उसका जाना हुआ था। दूसरा है एक दृश्यमान वापसी। मसीह का आना एक आंतरिक अदृश्य अनुभव नहीं होगा बल्कि एक दृश्यमान व्यक्ति के साथ एक वास्तविक मुलाकात होगी। अपनी वापसी की दृश्यता के बारे में संदेह के लिए कोई स्थान ना छोड़ते हुए यीशु ने अपने शिष्यों को बिजली की चमक के साथ अपनी वापसी की तुलना करके गुप्त रूप से आने के खिलाफ चेतावनी दी। मत्ती 24:27। पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि धर्मी और दुष्ट एक साथ उसके आगमन को देखेंगे। यूहन्ना लिखता है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। प्रकाशित वाक्य 1:7। और मसीह ने दुष्टों की प्रतिक्रिया पर टिप्पणी की, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। मत्ती 24:30। तीसरा है एक सुनाई देने वाली वापसी होगी। मसीह की वापसी के बारे में एक सार्वभौमिक जागरूकता की तस्वीर में जोड़ते हुए बाइबल का दावा है कि उसके आगमन को ध्वनि के साथ साथ दृष्टि से भी जाना जाएगा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। पहला तिसलोनिकियों 4:16 कहता है, तुरही के बड़े शब्द के साथ, मती 24:31, उसके लोग इकट्ठे होंगे। यहाँ पर कोई रहस्य नहीं है। चौथा, एक महिमामय वापसी होगी। जब मसीह लौटेगा तो वह विजेता के रूप में शक्ति के साथ एवं स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। मत्ती 16:27 यूहन्ना भविष्यवक्ता मसीह की वापसी की महिमा को अति नाटकीय तरीके से चित्रित करता है। वह मसीह को एक सफेद घोड़े पर सवार और स्वर्ग की असंख्य सेनाओं का नेतृत्व करते हुए चित्रित करता है। गौरवान्वित मसीह का अलौकिक वैभव स्पष्ट है। प्रकाशित वाक्य 19:11-16 देखें। पांचवा है, एक अचानक अनपेक्षित वापसी। मसीह विश्वासी जो मसीह के आगमन की लालसा और बाढ़ जो रहे हैं समय निकट आने पर जान जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:4-6। परंतु संसार के सामान्य निवासियों के लिए पौलुस लिखता है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 और इसे तुलना करें मत्ती 24:43 से। कुछ लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पौलुस द्वारा मसीह के आने की तुलना चोर से करना यह दर्शाता है कि वह किसी गुप्त अदृश्य तरीके से आएगा। हालांकि इस तरह का दृष्टिकोण हर किसी के दृष्टि में महिमा और वैभव में मसीह की वापसी की बाइबल की तस्वीर का खंडन करता है। प्रकाशित वाक्य 1:7 पौलुस का दृष्टिकोण यह नहीं है कि मसीह का आना गुप्त है, बल्कि यह है कि संसारिक लोगों के लिए यह उतना ही अनपेक्षित है जितना कि एक चोर का आना। मसीह अपने आगमन की तुलना जल प्रलय द्वारा प्रलय पूर्व दुनिया के अनपेक्षित विनाश के साथ करके इसी बात को कहता है, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहाना ले गया तब तक उनको भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मत्ती 24:38-39 हालांकि नूह ने आने वाले जल प्रलय के बारे में कई वर्षों तक प्रचार किया था, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए यह अचानक हो गया। दो वर्ग के लोग रहते थे। एक वर्ग के लोगों ने नूह के वचन पर विश्वास किया और जहाज में चले गए और बच गए। दूसरे वर्ग के लोगों ने जहाज के बाहर रहने का विकल्प चुना और फिर जल प्रलय आया और सभी को बहाकर ले गया। मत्ती 24:39। छठा, एक प्रलयकारी घटना। जल प्रलय की उपमा स्वरूप नबूकदनेस्सर द्वारा धातु की मूर्ति का स्वपन उस प्रलयकारी तरीके को दर्शाता है जिस तरह से मसीह अपने महिमा के राज्य को स्थापित करेगा। नबूकदनेस्सर ने एक विशाल मूर्ति स्वपन में देखी जिसका सिर तो चौके सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूपकाल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना चला, कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। दानियल 2:32-35। इस स्वपन के माध्यम से परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को विश्व के इतिहास का सारांश दिया। उसके दीन और मसीह के राज्य एक पत्थर की स्थापना के बीच चार प्रमुख राज्य या साम्राज्य और फिर कमजोर या शक्तिशाली देशों का समूह क्रमानुसार संसार के मंच पर कब्जा करेगा। मसीह के दिनों से व्याख्याकारों ने इन साम्राज्यों की पहचान बाबुल 605-539 ईसा पूर्व, मादी फारस 539-331 ईसा पूर्व, यूनान 331-168 ईसा पूर्व और रोम 168 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी तक साम्राज्य के रूप में की है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, रोम के बाद कोई अन्य साम्राज्य सफल नहीं हुआ। 4वीं व 5वीं शताब्दी ईस्वी में यह अनेक छोटे छोटे राज्यों में टूट गया जो बाद में यूरोप के विभिन्न राष्ट्र बन गए। सदियों से शक्तिशाली शासकों चार्ली मैग्ने, चार्ल्स 5वां, नेपोलियन, कैसर विल्हेम एवं हिटलर ने एक और विश्व साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की है। प्रत्येक असफल हो गए, जैसा कि भविष्यवाणी ने कहा, जैसा लोहा मिट्टी से मेल नहीं खाता, वैसा ही वे भी एक ना बने रहेंगे, भविष्यवाणी करती है दानियल 2:43 में। अंत में स्वपन नाटकीय चरमोत्कर्ष पर केंद्रित है। परमेश्वर के अनंत राज्य की स्थापना हाथों के बिना कटा हुआ पत्थर मसीह के महिमा के राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। दानियल 7:14, प्रकाशित वाक्य 11:15, जो दूसरे आगमन पर मानव प्रयास के बिना स्थापित किया जाएगा। मसीह का राज्य किसी अन्य मानव साम्राज्य के साथ साथ अस्तित्व में नहीं होना है। जब वह रोमन साम्राज्य के शासन के दौरान पृथ्वी पर था, तब तक सभी राष्ट्रों को कुचलने वाले पत्थर का राज्य नहीं आया था। केवल लोहे और मिट्टी के पैरों की अवधि के पश्चात ही विभाजित देशों के समय यह आएगा। इसे दूसरे आगमन पर स्थापित किया जाना है, जब मसीह धर्मियों को अधर्मियों से अलग करता है, मत्ती 25:31-34। जब यह आएगा, तब यह पत्थर या राज्य उस मूर्ति के लोहे व मिट्टी के पैरों पर प्रहार करेगा और यह सबको चूर चूर करेगा व सभी राज्यों का अंत कर देगा। दानियल 2:34-35-44। वास्तव में दूसरा आगमन एक धरती को हिला देने वाली घटना होगी। मसीह का दूसरा आगमन मानवता के दोनों महान विभाजनों को प्रभावित करेगा। वे जिन्होंने उसे व उसके द्वारा लाए गए उद्धार को स्वीकार किया है और वे जिन्होंने उसे मुंह मोड़ लिया है। हम देखते हैं, पहला, मसीह में मरे हुओं का पुनरुत्थान होता है। मसीह की वापसी की घोषणा करने वाली तुरही की आवाज पर धर्मी मृतक अविनाशी व अमरता की दशा में जिलाए जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 15:52-53। पुनरुत्थान, पवित्र लोग मन, आत्मा और शरीर में परमेश्वर की सिद्ध छवि को दर्शाते हैं। मसीह के पुनर्स्थापना के कार्य के पूरा होने का अनुभव करते हैं। 1 कुरिन्थियों 15:42-54। दूसरा है, जीवित विश्वासियों का परिवर्तन होता है। जब धर्मी मरे हुओं का पुनरुत्थान किया जाएगा, तो दूसरे आगमन के समय पृथ्वी पर जीवित धर्मी लोगों को बदल दिया जाएगा, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। यह प्रतिज्ञा हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 15:53 में। तो यीशु मसीह का आगमन एक ऐसा होगा जिसे सब कोई जानेंगे, अदृश्य नहीं होगा लेकिन शाब्दिक और दृश्यमान होगा। धर्मी लोग बचाए जाएंगे और धर्मी लोग जो बीते समय में रहे हैं पर मर गए उनको तुरही फूक करके जिलाया जाएगा। परमेश्वर के दूत उन्हें धर्मी लोगों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन पापी लोग उसके रोशनी से, उसके प्रकाश से ध्वस्त भस्म होकर मर जाएंगे। हम लोगों के पास आज यह मौका है कि हम यीशु मसीह को अपनाएं और उसके आने का इंतजार करें कि जब वो आएगा हम उसके साथ जाने सके। हम लोगों को धर्मी लोगों के दल में होना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा हमें मदद करे कि हम उसके पुकार को, उद्धार के पुकार को पहचाने और ग्रहण करें कि हम धर्मी लोगों के दल में हो, उद्धार पाए और यीशु मसीह के संग उसके स्वर्ग राज में ले जाए जाएं उनके स्वर्गदूतों के द्वारा। आपको और मुझे परमेश्वर बहुताय से आशीष दे। आपको परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा दे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे चरणों के पास आते हैं पिता। हमें तेरा आत्मा दे, तेरा बुद्धि दे कि हम यीशु मसीह के आने के दिन के लिए तैयार हों। हम उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें और अपने जीवन को तू अपने आत्मा के द्वारा परिवर्तन कर दे पिता। धर्मी और पवित्र बना कि जब तू आएगा हम सब तैयार रहने पाए और तेरे संग भाग्यों में प्रभुतों में संग पाए। दिन के लिए हमें तैयार कर यीशु के नाम को मानता हूँ। आमीन।
सदा खोलिए, मधुर वचन सदा बोलिए, वचन दीपक पथ का उजियारा, वचन दीपक पथ का उजियारा, धन्य जो उस पथ हो लिए, धन्य जो उस पथ हो लिए, मधुर वचन सदा बोलिए।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@sudaventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।